आरव आयू को लेकर ओबरॉय फैमिली के यहाँ डिनर के लिए आया हुआ था। वहाँ आते ही आयू को अपने नए जम की यादें याद आने लगी थीं और अचानक ही उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। आयू चिल्लाकर बेहोश हो गई थी। निर्वाण ने उसे चेक किया तो उसने यही कहा कि शायद आयू को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। उसके बाद आरव को कुछ नहीं सूझा, वो आयू को लेकर सीधा हॉस्पिटल जा रहा था। उसने किसी के साथ आने तक का वेट नहीं किया था। बाकी पूरी ओबरॉय फैमिली आरव की गाड़ी के पीछे अलग गाड़ी में आ रही थी। निर्वाण गाड़ी ड्राइव कर रहा था और इस वक्त उसके दिल में आयु की ही चिंता थी। उसने मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक वो इतनी बीमार हो गई। मुझे अच्छे से याद है वो रेगुलर चेकअप करवाती रहती थी, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करती थी, टाइम पर उठती थी, उसकी लाइफस्टाइल भी काफ़ी हेल्दी था। मुझे ना उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, फिर चाहे उसकी शादी किसी से भी हो। आशी उसी के पास में बैठी हुई थी। निर्वाण के चेहरे की तरफ देखकर आशी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगी। पता नहीं क्या हो गया उसे, पिछले एक महीने से किसी से ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। ये सब उस आरव की वजह से हुआ है और आप लोगों की फालतू जिद के कारण, शालू बीच में बोली। ठीक है, गलती से पार्टनर एक्सचेंज हो गए थे, पर गलती को सुधारा भी जा सकता था। लेकिन नहीं, आरव तो मुझे किसी के लिए भी सही नहीं लगता था, ना आयु के लिए और ना ही आशी के लिए। पहले आपने उसे आशी के लिए सिलेक्ट किया तो बाद में आयु की आरव से शादी हो जाने के बाद उसकी मर्जी के खिलाफ उसे आरव के साथ भेज दिया। जरूर उसी ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया होगा, बोलते हुए शालू रो पड़ी थी। अर्जुन भी परेशान थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, एक बार आयु ठीक हो जाए उसके बाद मैं उससे खुद बात करूंगा, अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो इस बार मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, बोलते हुए उन्होंने आशी की तरफ देखकर कहा। जबरदस्ती तो मैंने तुम्हारे साथ भी की है आशी बेटा, तुम्हें निर्वाण के साथ नहीं रहना है तो तुम बताना मुझे, हम इसका भी हल निकाल लेंगे। इतने दिनों में पहली बार अर्जुन ने अपनी गलती मानते हुए आशी से उसके दिल की बात पूछी थी। अर्जुन की बात सुनते ही कुछ पल के लिए आशी और निर्वाण ने एक दूसरे की तरफ देखा। पिछले एक महीने से वो दोनों साथ में रह रहे थे, भले ही उनका रिश्ता आगे ना बढ़ा हो लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए थे। आशी ने बात को टालने के लिए कहा, आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गए पापा, पहले हम आयु के बारे में सोचते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, भगवान ना करे कि उसे कुछ भी हो। सब आयु के ठीक होने की दुआ कर रहे थे। वहीं अपनी गाड़ी में आरव आयु का हाथ पकड़े गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने भारी आवाज़ में कहा, मैंने कभी भगवान में यकीन नहीं किया, लेकिन जिस दिन थेरेपी के लिए जा रहा था तब आपसे यही मांगा था कि अगर ये मेरी है तो इसे मेरे पास भेज दीजिए। आज भी यही कहता हूँ कि प्लीज़ इसे सब कुछ याद दिला दीजिए, मुझे मेरी मिसेस खुराना वापस चाहिए। अब क्या बार बार आप हर जन्म में इसे मुझसे छीनते ही रहेंगे, कुछ तो दया कीजिए आप मेरे ऊपर। आरव आयु को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वहां जाते ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। उसने आरव और आयान को भी वहां बुला लिया था। इस वक्त कहने को आरव के अपने वही थे, आयान और आर्या भी आयु के लिए उतनी ही परेशान थे जितना आरव। इतनी परेशानी के बीच शालू ने आरव के पास आकर गुस्से में कहा, अब से तुम मेरी बेटी से दूर रहोगे, उसे होश में आने के बाद तुम उससे मिलने भी नहीं जाओगे। आरव ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, ना ही वो कुछ कहना चाहता था, फिलहाल उसके लिए सबसे ज़रूरी आयु का ठीक होना था। उसने शालू की बात को इग्नोर किया जिससे उसे और भी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ माहिरा डॉक्टर जैन के थेरेपी सेंटर में डॉक्टर जैन के साथ में थी। आयु की पिछली थेरेपी लगभग 3 दिनों पहले हुई थी। माहिरा इस वक्त डॉक्टर जैन से नेक्स्ट थेरेपी के बारे में बात करने के लिए आई हुई थी, साथ ही वो उनका लैब भी देखना चाहती थी। डॉक्टर जैन का पूरा सेशन समझने के बाद माहिरा ने कहा, आपने आरव को सब कुछ याद दिलाया, ये अच्छी बात है, लेकिन आयु के साथ आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, आप सुबह ही उन्हें थेरेपी के लिए बुलाएंगे। अभी 2 दिन का टाइम और बाकी है, उसकी बॉडी एक और दर्द झेलने के लिए तैयार नहीं होगी, ऐसे में हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है, दिमाग की नसें भी फट सकती है, डॉक्टर जैन ने अपनी थेरेपी के साइड इफेक्ट बताते हुए कहा। पर माहिरा को कहाँ इससे फ़र्क पड़ने वाला था। माहिरा बिना किसी भाव के बोली, हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर बीच थेरेपी में वो मर भी जाए, आरव अच्छे से जानता है कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, वो अब थेरेपी करवाने से पीछे भी नहीं हट सकता, ये हमारे पास अच्छा मौका है। आपको कब से दूसरों की जान की परवाह होने लग गई, मैंने आपके बारे में सब पता करवा लिया है, आपके 3 पेशेंट की थेरेपी के बीच में जान चली गई थी, वो लावारिस थे तो किसी ने उनके बारे में पूछा नहीं। माहिरा के लिए किसी के बारे में पता लगाना वैसे भी कौन सा मुश्किल काम था। डॉक्टर जैन ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हामी भरी और आरव को कल अर्ली मॉर्निंग आने का मैसेज कर दिया था। दूसरी तरफ आरव हॉस्पिटल में था, आयु को अभी तक होश नहीं आया था। उसने जैसे ही डॉक्टर जैन का मैसेज देखा वो आर्या से बोला, डॉक्टर जैन ने नेक्स्ट थेरेपी का कहा है, मेरे लिए आयु का ठीक होना जरूरी है, चाहे उसे अपनी पिछली बातें याद हों या नहीं, लेकिन आप उन्हें इस तरह बीच में भी नहीं लटका सकते हैं डैड, कब तक आप दोनों एक बंद कमरे में रहेंगे, जब भी मॉम बाहर आएंगी उन्हें एहसास हो जाएगा कि इस दुनिया में काफ़ी सारे बदलाव आ गए हैं, फिर वो अपनी फैमिली फ्रेंड सब के बारे में वो पूछेंगी, आपको थेरेपी के लिए चले जाना चाहिए, यहाँ का मैं मैनेज कर लूँगा, आर्या ने उसे काफ़ी प्यार से समझाया। आयान भी उसकी बात से सहमत था। अयान ने आरव से कहा, यहाँ हॉस्पिटल से आयु को निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बस उसे एक बार होश आ जाए, हम बोल देंगे कि उसे रेस्ट की जरूरत है और फिर तुम उसे लेकर निकल जाना। हमारी मर्जी के खिलाफ कोई उसके रूम में झांकेगा तक नहीं। उनके समझाने पर आरव ने थेरेपी के लिए हाँ कह दी थी। वैसे भी ये आयु के लिए जरूरी था। वो ये बात कहाँ जानते थे कि माहिरा वहाँ पूरी प्लानिंग करके बैठी हुई है। डॉक्टर जैन ने थेरेपी का टाइम सुबह के 6 बजे डिसाइड किया था, जिसके हिसाब से आरव को आयु को लेकर वहाँ से सुबह के 4 के करीब निकलना था, लेकिन उसके लिए आयु का होश में आना जरूरी था। आरव, अयान और आर्या बातें कर रहे थे तभी डॉक्टर रूम से बाहर निकल कर आया और उन्होंने आयु के होश में आने की बात कही। डॉक्टर ने रूम से बाहर आकर हेल्थ अपडेट देते हुए कहा, उन्हें 15 मिनट पहले होश आ गया है, लेकिन उनका दिमाग शांत नहीं था। वो अपने हस्बैंड आरव खुराना से मिलना चाहती थी, थोड़ी अग्रेसिव भी हो रही थी। ऐसे में उनका इतना प्रेशर लेना सही नहीं, तो हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? निर्वाण ने पूछा, जिस पर डॉक्टर ने नामे सिर हिलाकर कहा। वो बस अपने हस्बैंड का नाम ले रही थी, उन्हें सिर्फ आरव से ही मिलना है, तो उनके अलावा मैं किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। डॉक्टर की बात मानकर आरव कमरे के अंदर जाने को हुआ, तभी शालू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम मेरी बेटी से दूर रहोगे, तुम्हारी वजह से ही उसकी ये हालत हुई है। वो इतना एग्रेसिव तुम्हारा नाम लेकर ही हो रही है, क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ?
आरव ने गुस्से में शालू का हाथ झटका और सर्द आवाज में कहा, बेहतर होगा कि आप मेरे और मेरी वाइफ के मामले में बीच में ना बोलें। अब तक मैं चुप था क्योंकि आयु की हालत सही नहीं थी, अब वो ठीक हो गई है तो आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरी फैमिली के अलावा आयु के आसपास कोई और लोग रहें। आरव उन्हें जवाब देकर कमरे के अंदर आ गया था। उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे और आयु गहरी नींद में थी। उसे ठीक देखकर आरव ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत आर्य को कॉल पर कनेक्ट करके कहा, तुम हमारे यहाँ से निकलने का इंतजाम करो, कल सुबह आयु की थेरेपी होकर रहेगी हर हाल में। आर्य ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और उनके वहाँ से निकलने के इंतजाम करने लगा। क्या डॉक्टर जैन के थेरेपी सेंटर जाने के बाद आरव और आयु माहिरा के जाल में फंस जाएंगे, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। मिलते हैं अगले पार्ट पर, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।